ओम शांति। आज के मुरली याद करें, बाबा के महावाक्य क्या बनाते हैं बाबा? शीतल देवी देवता नहीं, शीतल देव देवी, पर शीतलाओं का गायन है इसलिए बाबा ने वही शब्द यूज किया। बाबा हमें शीतल करता है, कौन सी तपत बुझा देता है बोलो ना, सिंपल, विकारों की तपत, गर्मी। और तुम सभी ज्ञान के शीतल छींटे डालकर सभी को शीतल करते हो, इस पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन एक राज भरी लाइन और थी मुरली में, आपने कैच किया हो आज की मुरली से, जो संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं उनका ही साक्षात्कार होता है। ये गहरी गहरी बातें भगवान के महावाक्यों में आती हैं, जो हम सभी को प्रेरणा देती हैं कि हम अपने को शीतल करें। गीत भी बहुत अच्छा बजा दिया इसने, सच्चाई आ जाएगी मुख पर, बोल में, होठों पे मुस्कान आ जाएगी, जीवन खेल उठेगा, पवित्रता सुगंध है, इसकी सुगंध से बाबा ने हमारा जीवन भर दिया है। भरा है सभी का? भरा है। बाबा के कुछ महावाक्य याद कर लें। पवित्रता किसकी जननी है? माताएं नहीं बोल रही, सुख शांति की। अगर दुख और अशांति है तो क्या समझना है? पवित्रता की कमी है। कब यहां विचार करना है, बहुत लोग ब्रह्मचर्य में बहुत मजबूत रहते हैं लेकिन अशांत भी रहते हैं। कहां गड़बड़ है? गुस्सा भी बहुत आता है। कईयों को आपने देखा होगा, सन्यासी तो कोई प्रसिद्ध रहते हैं इस बारे में, गुस्सा ज्यादा करते हैं, होंगे ब्रह्मचारी, कोई उनके विरुद्ध कुछ बोल दे तो नाराज हो जाते हैं। हाँ, श्राप तो अच्छी तरह देते हैं। तो सोचना है पवित्रता की गहराई क्या है। ये अग्नि है जो जलाती है, काम अग्नि है जो जलाती है, हमें इसको, इस अग्नि को बुझाना है। कहाँ बैठकर? ज्ञान की चिता पर बैठाते हैं बाबा, हमें ज्ञान दिया है। तो संपूर्ण पवित्रता के बारे में थोड़ा सा विचार कर लें, जिसको दूसरा शब्द बाबा देते हैं, निर्विकारी स्थिति, काम से भी मुक्त, बोलो आगे, क्रोध से भी मुक्त, चिंताओं से भी मुक्त, लोभ की बहुत सारी इच्छाओं से भी मुक्त, मोह से भी परे होते जाएं, अहम, मैंपन, तेरा, मेरा, ये सब मिटता जाए और आत्मा किस में स्थित हो जाए? स्वमान में। याद कर ले, अभी अभी पीछे आया है, आलस और अलबेलापन, ये भी क्या है? सूक्ष्म में पवित्रता, ईर्ष्या और नफरत, ये भी अपवित्रता के ही हिस्से हैं। तो बाबा का एक बहुत गहरा महावाक्य मैं आपको याद दिलाऊं, जब से मैं सुना मुझे याद रहता है, इस पे सबको कार्य करना है। संपूर्ण पवित्रता, ध्यान से सुन लेंगे सभी भाई बहने, संपूर्ण पवित्रता केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की स्थिति नहीं है, परंतु साधारण संकल्पों से भी ऊपर श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित हो जाना, ये संपूर्ण पवित्रता है। कर्मेंद्रियों को शीतल कर लेना, ये भी अग्नि है। आंखें बुरा बुरा देखें तो चित्त शांत होगा, कान बुरा सुने तो अशांति होगी। हमारे स्वप्न भी पावन हो जाएं, हमारा व्यवहार भी पवित्र हो जाए, दृष्टि भी आत्मिक हो जाए। देखो बाबा ने ही ये पवित्र बनने की विधियां बताई हैं। अशरीरी होना, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना और सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी था मुरली में, तुम सर्वशक्तिवान थे, बाबा ने मास्टर नहीं बोला, सर्वशक्तिवान थे। कब? कब? जब विश्व पर राज करते थे। विश्व पर राज करने वाले मोस्ट पावरफुल होंगे ही ना। तुम संपूर्ण पवित्र थे तब, निर्विकारी थे, माला माल थे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को कंगाल बना दिया है और बाबा आकर फिर से सिरताज बनाते हैं। देखो बाबा ही ये सब बातें करते हैं, शास्त्रों में भक्ति में ये सब बातें नहीं हैं। तो हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, हमें याद रखना है हमारी पवित्र वाइब्रेशंस सबसे पहले प्रकृति को पावन करते हैं, आत्मा के बाद हमारे चारों ओर फैलते हैं। ये जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, सब में हमारे पवित्र वाइब्रेशन समाते हैं। आप सभी को मालूम हो, जो जितनी पवित्र आत्मा है, अब चलेंगे तो हम धरती पे ही, हमारे कदमों से पवित्र वाइब्रेशंस धरती में समाते ही रहेंगे। हवा हमें टच करती है, बहती रहती है। अब लाखों पवित्र आत्माएं बन गई, उनको टच करके हवा पवित्र बन के आगे बहती है। सूरज की गर्मी चारों ओर फैल रही है, अग्नि का सोर्स है सूरज, ये वाइब्रेशंस जाते हैं संपूर्ण अग्नि को। आकाश तो फैला हुआ है, ये फैलते हैं सारे आकाश में। और जल हमारे शरीर में भी है और बाहर भी है, जल का हम निरंतर सेवन करते ही हैं, वो हमारे पवित्र वाइब्रेशन से पवित्र बनता है। तो बहुत बड़ी सेवा पवित्र आत्माओं के द्वारा होती है। तो ब्रह्मचर्य के बाद श्रेष्ठ स्वमानधारी बनना, महान संकल्पों में रहना, श्रेष्ठ ईश्वरीय नशे में रहना, सभी व्यर्थ की इच्छाओं से मुक्त कर देना अपने को, ये हम सबको करना है। तो इस अग्नि को बुझाकर अपने को शीतल करना, चित्त निर्मल। देखिए गीता से ही एक बात चलती आई है, हम सबको जानना चाहिए, काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। वहां लोगों ने, आचार्यों ने समझ लिया, काम का अर्थ काम विकार नहीं किया। काम महाशत्रु है, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, ये सब बातें वहां लिखी हुई हैं। लेकिन काम को क्या समझ लिया? कामना, काम को कामना। हालांकि बाबा ने भी हमें कहा काम को शुभ कामनाओं में बदल दो, लेकिन उन्होंने काम को इच्छाएं समझ लिया कि इच्छाएं मनुष्य को दुखी करती हैं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है। पर असली बात काम विकार की है, वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध होता है। कामी व्यक्ति का मन बहुत निर्बल हो जाता है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है अंदर में, क्योंकि दूसरे लोग वैसा काम नहीं करेंगे जैसा वो चाहते हैं। तो बाबा ने बैटरी डिस्चार्ज और चार्ज होने की बात तो रोज बताई। 16 कलाओं की जब हम बात करते हैं, हमें 16 कला बनना है, तो वो कलाएं ये कला नहीं है, गाने की कला, लिखने की कला, खाने खिला बनाने की, ये कलाएं नहीं। कला माना आत्मा की डिग्री पूरी हो गई। नहीं तो कोई लग जाए कि डांस करने की कला, म्यूजिक सीखने की बजाने की कला तो उसी में लग जाएंगे, तो देवान हो जाएगा ना सारा। कलाएं वो नहीं होती, कलाएं माना आत्मा की डिग्री बढ़ते बढ़ते 100 पर पहुंच गई। जैसे हमारी बैटरी की बढ़ती घटती है ना, आजकल तो उदाहरण सहज है, बैटरी मोबाइल की रोज डिस्चार्ज होती है, 5-7 पे आ गई, 10 पर आ गई, फिर हम उसे चार्ज करते हैं। तो बाबा ये रोज सिखाते हैं, सर्वशक्तिवान से कनेक्शन जुड़ने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाएगी, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगी इसको कहेंगे सोलह कला संपूर्ण। तो हम सभी चित्त को शीतल करें, निर्मल, जितना हमारा चित्त शांत होगा उतना ही पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। बहुत ध्यान रखना है सबको, दुनिया में भी मान्यता है किसी देश में जितनी शांति होगी उस देश का उतना ही विकास होगा, अशांति तो विकास को रोक देगी ना। हम भी जितना अपने चित्त को शांत करेंगे उतना ही स्थिति आगे बढ़ेगी। तो चित्त को शांत करना है, कहाँ कहाँ शांत होता है ये चित्त मनुष्य का, बोलो, इच्छाएं पूरी ना होने से, और बोलो, विघ्न आने पर, ठीक बोल रहे, विघ्न आने पर, और बोलो, कोई गुस्सा कर ले ज्यादा, एक बात है हमें गुस्सा है, दूसरा कोई हम पे ज्यादा करे, क्रोध बहुत बड़ी अग्नि है जो तो शांति को भी जलाकर नष्ट कर देती। आज का एक उदाहरण बताऊं, किसने फोन किया, मेरा लड़का बहुत कोई नशे की चीज है चरस या क्या वो खाने लगा है, मानता नहीं है, पैसा न दो तो मारने के लिए तैयार हो जाता है, नहीं दोगे तो मैं सुसाइड करूंगा, बहुत क्रोध। अब माँ बाप क्या करे बेचारे, बंद गए देव, कैसा चक्रव्यूह है, कहा क्या करूं, क्योंकि इन सब चीजों से आजकल किडनी फेल होती है, लीवर फेल होता है, हार्ट पे इफेक्ट आता है, मृत्यु होती है। मैंने कहा भाई संभालो उसे, क्या करूं, कोई ऐसा जगह होती है क्या जहां से भर्ती कर दूं, अभी सबको पता भी नहीं होता। मैंने कहा भाई नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, वो तो जाएगा ही नहीं, वो तो हमें मारपीट करता है। मैंने कहा कुछ मदद लो पुलिस आदि की, उसे भेजना पड़ेगा, नहीं तो देखो उसका हाल बिगड़ेगा। ये मृत्यु की ओर बढ़ते कदम होते हैं मनुष्य के, ये हाल हो गया तो कितनी बेचैनी होगी अंदर में, माँ बाप परिवार को शीतल रह ही नहीं सकते, वाइब्रेशंस भी नहीं दिए जाते, बेचारों का योग लगता नहीं है। तो हम सभी इन चीजों पे ध्यान दें, सबसे ज्यादा सबसे सुंदर अभ्यास स्वयं को शीतल करने का कौन सा है, चलो आगे वाली बहने बताओ, रोज करते हैं आप, शीतला देविया बैठी है ना यहाँ, सब हुई हैं शीतला देविया, अभी ज्वाला देवी हैं, बोलो शीतला देवी हैं। सबसे अच्छा अभ्यास है देह से न्यारापन, इसे प्योरिटी बढ़ती है, क्रोध भी शांत होता है और हमारे अंदर भी डीप साइलेंस होने लगती है। हमें बहुत अच्छा अभ्यास करना है देह से न्यारे होने का। एक बहुत अच्छा अभ्यास सभी किया करेंगे, मधुबन में है आप, सोने से पहले आज कर लेना, सवेरे शुरू करना, अपने को निराकार बनाना है, संकल्प करना मेरा ये शरीर जैसे इसके तत्व प्रकृति के तत्वों में मिल गए, और कौन बच गए, निराकार आत्मा, थोड़ी देर की, ये संकल्प ही सुख देगा, तत्व तत्वों में मिक्स हो गए, बच गई मैं निराकार आत्मा। तो चित्त शीतल होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे, मन शांत होगा, कर्मेंद्रियां शांत होंगी, संसार की इच्छाएं शांत होंगी, क्योंकि इच्छाएं भी मनुष्य को बहुत भटकाती हैं। इच्छाओं को भी कम करना है। लेकिन संसार की इच्छाएं, खाने पीने की इच्छा, और भी बहुत इच्छाएं होती हैं। आप ग्रस्त में रहते हैं भाई बहने, बच्चों की शादी करनी है तो क्या सोचेंगे? बोलो माताएं, हैं? नहीं, क्या सोचते हैं जब शादी कराते हैं? बहुत नहीं, अच्छी बहू तो मिल जाए, भबके से भी हो, ताकि उनकी जो हुई थी उससे अच्छी हो। होगा ना, ये इच्छा होती है ना। भले बेचारे कर्ज भी लेते हैं फिर। और कुछ लोग सोचते हैं भाई हमें सिंपल करना है, जितनी हमारी योग्यता है, क्षमता है, उतना ही करना, हम तो 1 लाख ही खर्च कर सकेंगे सब में, उतने में कर लेते हैं। तो अगर परमात्मा सुख हमें बहुत मिलता है तो बहुत सारी सांसारिक इच्छाएं भी शांत होने लगती हैं। यमान शान की इच्छा भी बहुतों को नचा रही है ना, दुनिया में बहुतों को नचा रही है। एक व्यक्ति मिला, उनको आमदनी बहुत ज्यादा है मास की। वो बेचारा बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा सा परेशान था, मेरे से बात की, मेरे लड़के को 35 लाख रुपए भी मास में कम पड़ रहे हैं। 35 लाख, सोच लो माताओं, आप तो 3500 भी खर्च नहीं करती होंगी, 35 लाख भी कम पड़ रहे हैं। मैंने देखा उनके माँ में घूमा था एक दिन में, वहां कितने शौक उन्होंने पाले हुए हैं, खर्च कर रहे हैं, अच्छे कामों में भी खर्च करते हैं। जैसे अभी ठंड पड़ रही है तो कंबल बांट देते हैं, सड़कों पे जो सोए रहते हैं ना, सोतो सोतो पर ये के कंबल डलवा देते हैं, बहुत अच्छे काम भी करते हैं, भोजन बंटवा देते हैं, कोई भी खा लो भाई, गरीब बैठे हैं खिला दो उन सबको, ये सब अच्छी बातें भी हैं। लेकिन इच्छाएं मनुष्य को बहुत परेशान करती हैं। अब बताओ मोह भी अग्नि है या नहीं? कुमार बताएंगे, मैं माताओं से नहीं पूछता आज। कुमार, मोह अग्नि है या नहीं? राम बोलो, मोह भी अग्नि है। क्यों अग्नि है? प्यार बंट जाता है, चाहे मोह मनुष्यों से हो या वस्तुओं से हो, प्यार बंटता है। देखो वस्तुओं में भी तो प्यार जाता है ना, प्यार बंटता है तो ऊपर से प्यार कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं अशांति को जन्म देगा। मोह तो बहुत सूक्ष्म चीज है, प्यार भी है, उसमें प्यार भी समाया होता है, लेकिन वो कष्टदायी भी बहुत होता है। हमें मृत्यु को क्या समझना है? बोलो, मृत्यु क्या है? मृत्यु को डिफाइन करेंगे भाई लोग, करें ठीक बोल रहे, वस्त्र बदलने का नाम है, गीता में भी है। मृत्यु कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, ये तो बीच में रेस्ट की एक जगह है, आत्मा थोड़ा समय रेस्ट कर लेती है। वस्त्र बदलने का नाम मृत्यु है। और रमेश, एड्रेस बदलने का भी बोलो, कपड़ा चेंज कर लिया। और मृत्यु के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है, जहां हिसाब किताब जब जिसका पूरा हुआ, वहां से उसको छोड़कर जाना ही है। अभी एक जगह हम गए, उसको पोतरे ने जन्म लिया और वहीं बस 2 दिन में ही हॉस्पिटल में ही थी वो माता, वहीं मृत्यु हो गई। तो ये तो ज्ञान में है, परिवार में ज्ञान का प्रभाव है, तो सबने स्वीकार कर लिया भाई जन्म देना ही, बस इतने तक ही इसका कर्मों का नाता था, हमसे पूर्ण हो गया। तो कर्म जब पूर्ण हो जाते हैं किसी के किसी से, तो आत्मा वहां रह नहीं सकती, हमें ये याद रखना है। ये कर्मों के खेल पर डिपेंड करता है। और अब मृत्यु बहुत होंगी, बाबा के शब्दों में मृत्यु का बाजार गर्म होगा, अभी होगा या नहीं। कई लोग कहते हैं बाबा विनाश को क्यों नहीं रोकते, आप तो सर्वशक्तिवान हो। बाबा के सामने भी ये प्रश्न आते रहे थे, क्यों नहीं रोकता बाबा? बोलो। हाँ ठीक बोल रहे, स्थापना होनी और पाप भी बहुत बढ़ गए हैं, और बोलो किचरे समाप्त करने हैं उसे भाई लोग, और बोलो सफाई करनी है। जरूरी है क्या सफाई? अच्छा जरूरी है। तो बाबा ने उत्तर दिया, तुमने मुझे बुलाया ही था, घर ले चलो, हम बहुत दुखी हो गए हैं यहाँ। बाबा की बहुत अच्छी मुरलियां आती हैं, अभी आप सुनेंगे जल्दी। तुम मुझे बुलाते थे, तुम्हें पता नहीं था किसको बुला रहे हैं, किसको? महाकाल को। तो मैं तो तुम सबको ले जाऊंगा, अब तैयार हो जाओ। क्योंकि बाबा तो कह देते मैं तो तुम्हें मारने आया हूँ। भगवान है ना, कुछ भी बोले। मारने माना घर ले चलने, क्योंकि अब रात पूरी हो, कोई कहे दिन आए ही नहीं, दिन पूरा हो कोई कहे अब रात हो ही नहीं, अब ये तो होगा नहीं, ये तो खेल ही ऐसा है। तो महाविनाश भी इस खेल में निश्चित है, क्योंकि इस धरा पर स्वर्ग आना है। और मैं बाबा की एक बात सुनाया करता हूँ। बाबा ने एक संदेश में बहुत अच्छी बात कही थी, इस संसार के सभी लोग भगवान को पुकार कर कहेंगे इस दुनिया को नष्ट करो, क्योंकि ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है, तब संपूर्ण विनाश होगा। उसे पहले हिस्सों में थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, सबको आभास हो जाएगा ये दुनिया खत्म होनी ही चाहिए। अब मान लो मानसिक रोगी हो गए लोग, मान लो रात को लोगों को नींद नहीं आ रही है, बहुत लोगों को कैंसर बुरी तरह फैल गया है, तो क्या कहेंगे लोग? ये भगवान खत्म करो, अच्छी दुनिया बनाओ जहाँ ये सब न हो। तो विनाश तो नाम बुरा है, पर उसके बाद सुखद सुंदर सर्वश्रेष्ठ संसार इस धरा पर स्थित हो जाएगा। तो हम सभी अपने अहम को भी छोड़ें, अहम भी अग्नि है या नहीं? अहम से क्रोध को भी जन्म मिलता है, ईर्ष्या द्वेष भी अग्नि है, परचिंतन भी अग्नि है। परचिंतन करते ही सुख खत्म हो जाता है ना, जला दिया उसने हमारे आंतरिक सुखों को। तो हमें ईर्ष्या द्वेष से भी मुक्त होना है, कैसे? और क्रोध से भी मुक्त होना है, कैसे? अब दो चीजों को शीतल करना है, जो बड़ी कॉमन सी चीजें हैं। काम की अग्नि को तो सब जानते हैं, आजकल तो दुनिया में आग लगी हुई है, कितने बुरे बुरे केस हो रहे हैं भारत में, बदनामी भी हो रही है, अशांति कितनी होती है, मारामारी कितनी होती है, कितने घर बर्बाद होते हैं, ये सब तो हम देख रहे हैं। ईर्ष्या को कैसे खत्म करेंगे? बोलो, कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, किसी का नाम हो रहा है, हमें उनसे ईर्ष्या होती है, इसको कैसे खत्म करें? हम भी योग्य बने तो हम भी आगे बढ़ेंगे। वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी प्रशंसा करें। देखो ये सूक्ष्म रहस्य सभी याद रखेंगे। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, चाहे कोई उसे बढ़ा रहा है, चाहे बाबा बढ़ा रहा है, चाहे वो अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ रहा है, उसका नाम होगा। अगर हम उससे ईर्ष्या करते हैं तो हमें याद रखना है, हम मनुष्य से ईर्ष्या नहीं कर रहे, किससे ईर्ष्या कर रहे हैं? उसकी प्रगति से, उसकी सफलताओं से। तो जिनसे हम ईर्ष्या करेंगे वो हमारे पास कभी नहीं आएंगी। सभी ध्यान दें सूक्ष्म गति को, इसलिए हम अप्रिशिएट करें, प्रशंसा करें, हम उनकी वाह वाह करें, तो वही चीज हमारे पास भी आ जाएंगी। कोई व्यक्ति ऐसा आगे बढ़ रहा है जो योग्य नहीं है, तिकड़मबाजी करके आगे निकल गया है, इसका उत्तर मैं देना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आता है कि कई चालाक लोग आगे निकल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं, तो मुझे गीत सुनाया करते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। वो तो कलयुग आ गया ऐसा, लेकिन कई लोग देखते हैं कि कई लोग चालबाजी करके आगे निकल जाते हैं, और जो भोले वाले हैं, त्यागी हैं, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। ईर्ष्या होती है, कैसे यहां ईर्ष्या को खत्म करें, अब बहने उत्तर देंगी। ये भी तो होता है ना, संगठनों में होता है, योग्य व्यक्ति पीछे, अयोग्य आगे, उल्टा खेल। कलयुग में उल्टा खेल ही चलेगा ना, संगम भी तो कलयुग का हिस्सा है ना, वहां भी चल जाता है कभी कभी। बोलो अभी और बोलो। हाँ, तो बाबा ने इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी, क्योंकि ये बात भगवान के पास भी तो पहुंची, कई बार हम सुन चुके हैं। वो मनुष्यों की नजरों में ही तो आगे हैं, आप बाबा की नजरों में आगे हो, ये कई बार कहा बाबा ने, क्योंकि बाबा की नजरों में वही हैं जो योग्य हैं, जो योगी हैं, जो सच्चे हैं, जो पवित्र हैं, और जो जिनकी पवित्रता भी ढीली, केवल ऐसा वैसा करके आगे निकल रहे हैं, दूसरी बात याद रखनी, वो सदा आगे नहीं रहेंगे। आखिर सत्यता ही प्रकट होती है, देर तो लगती है कलयुग में उसे, लेकिन प्रकट कौन होता है, सत्य। बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य बोले हैं, सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। बहुत सुंदर भगवान के महावाक्य, बादल बिखरेंगे, सत्य का सूर्य प्रकट हो जाएगा, चमकने लगेगा। इसलिए इसमें भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि देखा योग्य हम थे, अवसर उन्हें मिल गए, हमें भी अवसर है। मान लो किसी अयोग्य व्यक्ति को अवसर मिल जाए और सेवा बड़ी हो, हम पीछे हैं, क्या करना चाहिए हमें? हाँ, अब हम एक अच्छा काम करेंगे, क्योंकि सेवा उसकी नहीं, सेवा बाबा की है, कल्याण आत्माओं का करना है, तो हम अच्छे वाइब्रेशंस दें सेवाओं के लिए उन आत्माओं को, तो उनका भी पुण्य बनेगा, हमारा पुण्य डबल बनेगा। तो इन बातों में भी ईर्ष्या द्वेष की जरूरत नहीं है। अब क्रोध की अग्नि को शांत करना है, ये दो अग्नि ज्यादा चलती हैं संसार में, क्रोध की अग्नि को शांत करना है, मैं इस अग्नि को बुझाना है। क्रोध कैसे पैदा होता है, कामनाओं से। मां देखती है बच्चा बात नहीं मानता तो गुस्सा आएगा, बिजनेसमैन देखता है कि 10 नौकर काम कर रहे ठीक नहीं करते, 2-4 उन पे गुस्सा आएगा, माताएं देखती हैं बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे मोबाइल में लगे हुए हैं तो गुस्सा आएगा। कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। अब क्या करें, मान लो एक माता है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, जरूर वो चाहेगी अच्छा पढ़ें, परंतु वो नहीं सुनते, अब यहां क्रोध आने की मार्जिन रहती है, क्या करेंगे? उत्तर भाई देंगे इसका, मोबाइल छीन लेंगे तो वो और भी कर सकते, फिर तो मोबाइल से ही मारने लगते हैं मां को, प्यार से भी समझाएंगे। और इससे आगे बढ़ो थोड़ा, आत्मिक दृष्टि रखते हुए, स्वमान में रहते हुए, रोज उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दो, फिर कहो तो वो मानेंगे। अधिकार से कहते हैं ना, मेरा लड़का है ना, सुनता नहीं, अच्छा देखती हूं तुम्हें, अधिकार उसमें अहम भी भरा होता है तो क्रोध भी आ जाता है। अधिकार नहीं, आप प्यार के अस्त्र का प्रयोग करना होता है, क्योंकि हम सब ये रोज देख रहे हैं। मोबाइल भी ऐसी माया बन गई है, कितना भी लोग कह दे मोबाइल खराब है, लेकिन वो तो आजकल बच्चों के लिए सबसे अच्छे खिलौने हैं। हाँ नहीं, बच्चे ही सिखाते हैं माँ बाप को। माताएं खुश भी होती हैं, गांव की माताएं मुझे कहती हैं आपकी क्लास हम बहुत सुनते हैं भाई जी। मैंने कहा कहाँ? नेट पे। तुम्हें नेट सीखना है? हाँ बच्चों ने सिखा दिया। बच्चे खोल के दे देते हैं, हम सुनते रहते हैं, सीख गए दीदी, सेल्फी लेना सीख गई बूढ़ी बूढ़ी माताएं। बड़ा अच्छी है, देखो विज्ञान ने प्रगति तो बहुत कर दी, और ये बातें अच्छी भी हैं, कोई खराब बातें तो नहीं है, सब जागृत हो गए, अच्छा हो गया है। तो हमें अपने चित्त को कैसे शांत करना है कि जो कुछ हो रहा है कलयुग के अंत में यही तो होना है। देखिए दो चीजें हो रही, ध्यान से सुन लेंगे अब बात। एक, जो कलयुग को बढ़ावा दे रही हैं चीजें। दूसरी, जो सतयुग के आगमन की तैयारी कर रही हैं चीजें। विज्ञान की उन्नति हो रही, इलेक्ट्रॉनिक्स देखो कितना सुंदर जगह पहुंच गया है कि आपने नेट खोला और आपको एक गीत चाहिए बोला और वो आ गया। जादू जैसा है ना काम, है ना जादू जैसा। कुछ भी चाहिए हो गया, कुछ भी देखना है जूता कौन सा अच्छा है, जूता बोला जूते आ गए, घर में पहुंच जाते ऑनलाइन। तो देखो कितनी अच्छी ये प्रोग्रेस, बातें मोबाइल से बातें, लंदन अमेरिका फट से बात कर लो, एक सेकंड लगता है, वीडियो कॉल कर लो, मार्केट जाने की भी छूट गई। तो ये प्रगति है ना विज्ञान की, ये प्रगति क्या करेगी? नहीं, ये प्रगति विनाश नहीं, विनाश के लिए प्रगति है एटम बॉम्ब्स हाइड्रोजन बॉम्ब्स की, ये प्रगति और प्रगति को प्राप्त करेगी, रिफाइन होगी और ये सतयुग में ट्रांसफर हो जाएगी। तो विज्ञान की दो ये चीजें चल रही हैं, एक विनाशकारी रिसर्च, दूसरी स्थापना के कार्य में। बाबा कहते थे ये विज्ञान तुम्हारे काम बहुत आएगा। तब तो पता ही नहीं था, आपसे 15-20 साल पहले था क्या ये सब हो जाएगा, 10 साल में तो बहुत कुछ हो गया। तो ये विज्ञान पहले स्थापना में काम आएगा, फिर ये और रिफाइन होके सतयुग में ट्रांसफर हो जाएगा, इन्हीं से पुष्प विमान बन जाएंगे, यही बन जाएंगे। देवता कोई वैज्ञानिक नहीं होंगे, देवता थोड़े खोज करेंगे, कॉलेजों में जाएंगे, लेबोरेटरी बनाएंगे कि पुष्प विमान कैसे बनना है, वो यहीं के वैज्ञानिक बनाकर हम सबको देकर जाएंगे। सहज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एटॉमिक एनर्जी दोनों मिलेंगी, फ्यूल तेल ये पेट्रोल डीजल इनकी जरूरत नहीं रहेगी, फटाफट बटन दबाओ इशारे से, जैसे आजकल देखते हैं ना नल के नीचे हाथ करो पानी आ गया, देखा है बहुतों ने, एयरपोर्ट पे तो यही है सब कुछ, आप गए दरवाजा खुल गया, खोलने की जरूरत नहीं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोग्रेस है ना, ये सब और रिफाइन होके सतयुग में देवी देवताओं के काम आएगा। इसलिए बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य है, साइंस जब परफेक्ट हो जाएगी, खोज है ना साइंस से, खोज है, साइंस जब परफेक्ट हो जाएगी तो जो इम्परफेक्ट मनुष्य हैं, अपूर्ण मनुष्य हैं, उनको विनाश करेगी, और जो परफेक्ट देवी देवता उनके काम आएगी। परफेक्ट साइंस परफेक्ट मनुष्यों के ही काम आएगी, और परफेक्ट मनुष्य कौन है? देवी देवता। तो बहुत सुंदर ये खेल चल रहा है संसार में। तो ये विज्ञान की प्रगति के पीछे भी कौन है बोलो? बाबा, हमारी साइलेंस पावर, योग की शक्ति। साइलेंस पावर से वैज्ञानिकों को नई नई रिसर्च करने की प्रेरणाएं मिलती हैं, उधर ऊपर से बाबा भी कराता है, इन दोनों को, दोनों के प्रभाव से ये विज्ञान धीरे धीरे अब तेजी से संपूर्ण होता जाएगा, रिफाइन होता जाएगा। तो हमें अपने चित्त को शीतल करना है, संकल्पों को शीतल करें। मैंने एक बात कही आपको, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, उसे स्वीकार करने की आदत डालें। हाँ नहीं, 2030 तक बहुत कुछ खत्म ही हो जाएगा, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म न भी हो तो दुर्गति का मार्ग तो जो संसार ने चुन लिया है ना, वो बहुत दुर्गति कर देगा संसार की। तो हमें चित्त को शीतल करने के लिए स्वीकार करना है कुछ चीजों को। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो चित्त शांत हो जाता है। भाई बीमारी भी कोई आई, उसको हमने स्वीकार कर लिया, ये हो गया, ठीक है, हो गया, स्वीकार कर लिया। अब देखो बड़ी बीमारी कैंसर चल रही है बहुतों को, जो इसे स्वीकार कर लेते हैं वो 15-20 साल जीते हैं मजे से, उथल पुथल में नहीं आते, उलझनों में नहीं आते, अशांत नहीं होते। हो गया है ना, ठीक है, जब तक बाबा जिंदा रखेगा अच्छे काम करेंगे, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बहुत अच्छा सब कुछ हम करेंगे। एक कहानी सुन लो लास्ट की, बनावटी है या रियल है। किसी को पता चला कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने बता दिया 6 मास जीना है। अच्छा पैसे वाला था, उसने अपने बच्चों को कारोबार संभाल दिया और कहा 6 मास बचे हैं मेरे लिए, मैं बहुत पुण्य करना चाहता हूँ, तीर्थों पर जाऊंगा, दान पुण्य करूंगा, 6 मास मैं परमात्मा के स्मरण में बिताऊंगा, बहुत आनंदित रहना चाहता हूँ। एक आधे नौकर को लेकर घर से निकल गया, पैसा आदि तो आजकल सहज है ही, सब जगह घूमा, बहुत खुश रहा, मन की सब इच्छाएं पूरी कर ली, दान पुण्य किया, बहुत खुश। वापिस आ गया, 6 मास पूरे हो रहे थे, कैंसर की चेकिंग हुई, डॉक्टर देख के हैरान हो गए कि कैंसर तो है ही नहीं, अब कहाँ चला गया, तीर्थों पे दान हो गया ना। मन के संकल्प, और वही व्यक्ति यदि सोचता हाय 6 मास रह गए, एक दिन कम हो गया भाई, अब 180 दिन में से 179 रह गए, 4 दिन और कम हो गए, 175 रह गए, पता नहीं कब मर जाऊं, तो 6 मास न जीता, 3 मास में विदाई ले लेता। तो स्वीकार कर लिया ना, और एक मार्ग निकाल लिया, स्वीकार किया और एक सुंदर नया मार्ग निकाल लिया। ये सभी सोच लें अपने अपने जीवन में, बहुत सारी बातें हरेक के जीवन में है, कोई भी मुक्त नहीं है। अरे वाह, आपकी घटना तो आपको बधाई हो, ठीक हो गई आप, बहुत अच्छा। देखो ये माता जी, ये भी ठीक हो गई हैं, अल्सर में, अल्सर और कैंसर, बहुत बहुत अच्छा, आप ठीक हो गई। हाँ समझ गया मैं ना। डॉक्टर ने कहा था पेट काट के बैग लगा देंगे, घर वाले ने कहा मरना ही है तो क्या लगवाना, और ये जी रही हैं। कितने साल से जी रही हैं? 20 साल। तो आप 20 साल और जिएंगी। देखो भाई, कैंसर पर विजय, बधाई हो, दवाई नहीं बधाई हो आपको। ये मन की स्थिति है, ये मन की खुशी है। तो स्वीकार करके मार्ग निकालना है। मन जितना खुश होगा ये बीमारियां उतनी भागेंगी, चिंताएं जितनी होंगी बीमारियां मार डालेंगी। इसलिए चित्त की अग्नि को पूरी तरह बुझा दें। ये शरीर भी बाबा का है या नहीं? बाबा का है, वो बहुत मदद करता है अगर हम उसको समर्पित करके चलते हैं। सब कुछ समर्पण करके चलने वालों को बाबा की बहुत मदद मिलती है। बाबा की मुरलियों में अभी 2-4 दिन से ही आ रहा है, तुम मुझे बहुत याद करोगे तो मेरी बहुत मदद प्राप्त होगी। हर फील्ड में मदद मिलती है, चाहे बीमारियों का हो, चाहे परिवार में समस्याएं आ गई हो, चाहे बिजनेस में कुछ हो गया हो, चाहे धन के पीछे कुछ हो गया हो, कर्ज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सब में बाबा की मदद मिल जाती है। तो बहुत अच्छा, सभी चित्त को शीतल करेंगे और आज रात को अभ्यास करके सोएंगे निराकार आत्मा हूं, और सवेरे उठते ही भी ये अभ्यास करेंगे, देह तत्वों में लीन हो गया, बच गई मैं निराकार आत्मा। चलो अभी इसी स्थिति के साथ हम 3 मिनट योग करेंगे। शरीर को सभी लोप करें और निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं।